نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم درو شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. ابھی جو یہ تقوی کے سلسلے میں جو کچھ بات چیت ہوئی تھی تو تقوی سے رہنا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے آج کل کے دور میں لوگوں کو, تو اللہ رب العالمین نے بہت ایک آسان طریقہ بتا دیا تقوی کے حصول کا. وہ کیا حصول کا طریقہ ہے؟ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو. تو ایمان والوں سے اللہ مخاطب ہیں, اے ایمان والو واتقوا اللہ, کہ تقوی اختیار کرو. ایمان لانے کے بعد اللہ کی دوسری چاہت کیا ہے, دوسری ریکوائرمنٹ کیا ہے اللہ کی؟ کہ ہم لوگ تقوی اختیار کریں. ایمان خالی لے کر آ گئے اللہ کے اوپر, کلمہ پڑھ لیا, اب جان نہیں چھوٹے گی. اللہ فرما رہے ہیں ایمان لانے کے بعد اب تقوی اختیار کرو. اب تقوی کیسے ملے گا, کہاں کس طرح سے ملے گا, تھوڑا سا ہمیں مشکل لگتا ہے, نہیں لگتا ہے ہمیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کونو مع الصادقین, جو اللہ والے لوگ ہیں ان کی صحبت میں رہ پڑو, جو سچے لوگ ہیں جن کا قال اور حال ایک ہو, تو وہ صادقین ہیں. تو اللہ والوں کی صحبت میں, مفسرین فرماتے ہیں مفسر قرآن کے یہاں مراد اولیاء اللہ ہیں, تو اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کا اللہ پاک قرآن پاک میں حکم دے رہے ہیں. تو اب ایمان والوں سے مخاطب ہیں, تقوی کا حکم دے رہے ہیں. تقوی کیسے ملے گا؟ تو صحبت اہل اللہ کا آدمی اہتمام کرے, تو گناہ چھوڑنے نہیں پڑیں گے. ہمارے مرشد عارف اللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے کہ صحبت اہل اللہ میں جب انسان آنا جانا شروع کرتا ہے تو اس سلسلے کی برکت سے اللہ پاک ایسا اس پہ فضل فرماتے ہیں بندے پہ کہ اس سے وہ گناہ چھوٹ جاتے ہیں جن کو وہ عادتاً برسا برس سے کرتا ہوا رہا, اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا, یاد بھی نہیں رہتا کہ یہ چیزیں میرے اندر سے نکل گئیں. یہ اتنا مبارک سلسلہ ہے. سلسلے سے کیا مراد بھائی؟ ہر آدمی نیک اچھی بات کر سکتا ہے, اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں, لیکن بھائی جو سلسلے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا الگ معاملہ ہوتا ہے. یا کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں, جیسے کوئی سچا کوئی اگر اللہ والا ہوگا تو پھر ان کے کوئی شیخ ہوں گے, پھر ان کے کوئی شیخ ہوں گے, پھر ان کا شیخ, پھر ان کے شیخ. وہ سلسلہ کہاں تک جا رہا ہے؟ یہ بیت کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو یہ کہلاتا ہے سلسلہ. تو جب کہیں آدمی کسی اللہ والے کی مجلس میں صحبت میں جاتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خاص روحانی برکات اور فیض اس کو سلسلہ در سلسلہ ملے گا اس شیخ کے ذریعے سے. یہ وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ اللہ والوں کی صحبت میں جاتے ہیں اور ان سے اصلاح کا تعلق قائم کرتے ہیں اور بیت بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ کہلاتا ہے پورا سلسلہ. تو اللہ پاک حکم دے رہے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ گے تو تمہیں تقوی آسان ہو جائے گا اور تمہیں تقوی نصیب ہو جائے گا. اور دوسری جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الرحمن فصل بھی خبیرہ, رحمان کی خبر اس کے باخبر لوگوں سے پوچھو. بتائیے آپ کتنی عجیب بات ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ رحمان کی خبر, میری فکر, میری خبر, میں کیسا ہوں, میں کیسا پیارا ہوں, میری کیا شان ہے, تو ان سے جا کے معلوم کرو جو مجھ سے پہلے سے باخبر لوگ ہیں. ورنہ اللہ کو تو بھائی سب مانتے ہیں, کون نہیں مانتا اللہ کو, لیکن اللہ پاک پھر بھی حکم دے رہے ہیں ان سے جا کے معلوم کرو جو مجھ سے باخبر ہیں. مراد اولیاء اللہ, کہ بھائی جب ان کی صحبت میں ہم جائیں گے بھی ہم اللہ کو مانتے تو ہیں, اللہ کو مانتے تو ہیں, جانتے بھی ہیں, لیکن اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں. ماننے میں اور پہچاننے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے, یہ اس میں اشارہ ہے. مانتے ہیں پہچانتے نہیں, کیونکہ جب انسان مانتا ہے اللہ کو, خالی ہاں میرا اللہ پر یقین ہے, اللہ کو مانتا ہوں, ماننا ایک الگ چیز ہے, لیکن میں کوئی بندہ اللہ کو پہچان گیا تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. پہچان کو عربی میں جس کو کہا جاتا ہے معرفت, معرفت الہیہ, ہم سنتے رہتے ہیں نا معرفت الہیہ, عارف باللہ. تو معرفت الہیہ اور عارف ہو جانا اللہ کا, عارف باللہ جس کو ہم کہتے ہیں, اس کو مطلب ہے اللہ کی پہچان والے لوگ. مجھے اللہ, کسی کو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی, جیسے معرفت الہیہ اللہ کی معرفت حاصل ہوگی کسی کو, عارف باللہ اللہ کی معرفت حاصل ہوگی, یعنی اللہ کو انہوں نے پہچان لیا. تو اللہ کی پہچان والے لوگ کم ہیں اور وہ اولیاء اللہ کہلاتے ہیں. تو اللہ پاک ایسے ہی لوگوں کے پاس بھیجنے کا حکم دے رہے ہیں کہ ان کے پاس جاؤ, پھر وہ تمہیں بتائیں گے جو میری پہچان رکھتے ہیں کہ میں کیسا پیار ہوں. اور اس کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ تم ان کی صحبت میں جاؤ گے تو تھوڑے عرصے کے بعد تمہیں احساس ہوگا کہ تم کہاں کس گندگی میں پڑے ہوئے تھے. تم رو گے اپنی حالت کے اوپر کہ یا اللہ میں کیسا مسلمان تھا, مانتا تو میں پہلے بھی تھا, لیکن اب جو آپ کی کیفیات اور آپ کی محبت میرے قلب میں آ رہی ہے اس کا تو نظام ہی الگ میں دیکھ رہا ہوں. मैं कितने अरसा आपको नाराज करता रहा, आपकी खाता रहा, नफ्स और शैतान की गाता रहा, ये कब सारी कैफियत पैदा होंगी और ये ज़मीर, मुर्दा ज़मीर कब बेदार होगा? जब आदमी सोवतों में जाता है उसके ऊपर एक कैफियत तारी हो जाएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते 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 फिर एक वक्त आता है कि गुनाह छोड़ना एक गुनाह करना गैर ज़माने की बात हो जाता है, छोड़ देता है सारे गुनाह। इसलिए अल्लाह पाक हुक्म दे रहे हैं। और आप सल्लम क्या फरमा रहे हैं, एक शख्स आया उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने कुछ ज़ाहरी नमाज रोजे से मुतालिक, कुछ ज़ाहरी इबादत के मुतालिक कुछ सवालात किए, फिर उसने तकवे के मुतालिक कुछ पूछा, तो आपने इरशाद फरमाया दो टोक अल्फाज में, अल्लाह कभी इसी को फरमाया मनकूल है कि आपने उसको बिल्कुल दो टोक अल्फाज में फरमाया कि तुम नेक अमाल को तकवे के मसावी मत बराबर करार दो, नेक अमाल को तकवे के बराबर मसावी मत करार दो, क्योंकि तकवा बहुत ऊँची चीज़ है, तकवा बहुत बड़ा मुकाम है। आज लोगों को यही नहीं पता, बाइफरकेशन ही नहीं आती, भाई नेक अमल मुबारक है हमने कर लिए, अब जान लड़ा के कोशिश करनी है तकवे से, चंद दिन किसी को शक हो भाई कुरान हदीस की बातों में शक नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि आजकल शहवात का और गुनाहों की लज्जतों का और मज़ों का इतना दौर दौरा है, तो भाई इससे डबल मज़े मिलेंगे, लज्जतों का शौक़ है ना किसी को भाई, तो तकवे की तरफ आए देखे कैसे उसको लज्जतें मिलेंगी। तो किसी को यकीन ना हो भाई 21 दिन 40 दिन किसी तरह अपने ऊपर जबर करके देख ले, गुनाहों से अपने आप को बचा के रखे, खास तौर पर जिन गुनाहों में मुब्तला है। हर आदमी का एक अलग गुनाह का हेड होता है, उसको पता होता है कि मेरे अंदर कौन से गुनाह हैं जिनमें मैं बहुत ज़्यादा मशगूल रहता हूँ और जो मेरी बहुत खूगर होते हैं बावजूद, हर एक का अलग मामला होता है गुनाहों का। तो जिस गुनाह को छोड़ने में जितनी ज़्यादा तकलीफ होगी उतना ज़्यादा उसको अल्लाह का प्यार आता होगा। अब आदमी देख ले हर एक का अलग मामला होता है अल्लाह से। तो अभी तो फिलहाल अभी ये बात हो रही है कि तकवा में कैसे हासिल होगा, तो तकवे के बारे में बताया भी। एक और हदीस शरीफ में आप सब इरशाद फरमा रहे हैं, हर चीज़ की कानें होती हैं जिससे चीज़ें निकलती हैं, यानी मसलन सोना सोने की कान से, कोयला कोयले की कान से। तो आप इरशाद फरमा रहे हैं अत्तक्वा कुलूबुल आरफीन, तकवे की जो कान हैं अल्लाह वालों के आरफीन के कुलूब हैं। आरफीन कौन? वही बात जो अल्लाह की पहचान रखते हैं, अल्लाह की पहचान रखते हैं। तो क्या मतलब हुक्म दे रहे हैं मतलब उनके सीने दरवेशा जिसको फारसी में कहा जाता है, कि अल्लाह वालों के कुलूब जो हैं वो तकवे की कानें हैं। यानी आप सलम इशारा दे रहे हैं कि जब उनके पास जाओगे उनकी सोबतों में बैठोगे तो तुम्हें तकवा हासिल हो जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते थे कि जब बग़ैर सोबत अहलुल्लाह के उलमा की और मुफ्तीहान कराम की इस्लाह ना हो सकी तो अवामुन्नास की कहाँ से हो जाएगी। कितनी बड़ी बात करें कि उलमा और मुफ्तीहान कराम की इस्लाह ना हो सकी बग़ैर सोबत अहलुल्लाह के, तो आम अवामुन्नास की कहाँ से इस्लाह हो जाएगी। सोचने वाली बात है। इल्म आ जाना अलग चीज़ है, लेकिन उस पर अमल भी आ जाना वो भी वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। तो बहुत से लोग इल्म वाले भी तकब्बुर की वजह से या किसी और वजह से वो सोबत अहलुल्लाह में जाने का इरादा नहीं करते, वो कहते हैं हमें क्या ज़रूरत है। हजरत वाला रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते थे ये बातें, हजरत फरमाते थे कि वो सोचते शैतान उनको बड़ा ही डाल देता है, मुझे क्या ज़रूरत है, मैं तो इतना बड़ा फना, मैं तो इतना बड़ा फना, मैं तो दिनों रात तो मैं दरस व तदरीस में रहता हूँ, मुझे किसी की जूतियाँ उठाने की क्या ज़रूरत है, मुझे किसी की सोबत में जाने की क्या ज़रूरत है, मैं क्यों किसी के नाज बर्दारियों उठाऊं। तो सब शैतानी वसवसे होते हैं, वरना अगर अपने इस्लाह पर हम नज़र डालें तो शायद ही कोई ऐसा मिलेगा कोई आलिम मुफ्ती कि जिसने अल्लाह वालों की सोबत ना अख्तियार की हो। सबसे बड़ी बात हज़रत बानी तबलीग हज़रत इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनको गरी के रहमत करे, वो ख़ुद खानका से उनका ताल्लुक था और वो खलीफा थे, बैत थे किस से, हज़रत खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह से। और हज़रत खलील अहमद सहारनपुरी जो बानी तबलीग के शेख थे उनके बारे में हज़रत मौलाना अब्दुलरशीद गंगोई रहमतुल्लाह से ये बैत थे, वो क्या फरमाते थे मौलाना अब्दुलरशीद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, कि हमारे खलील को, खलील अहमद सहारनपुरी, हमारे खलील को अल्लाह ने नस्बत सहाबा अता कर दिए, नस्बत सहाबा, उनका ईमान व यकीन सहाबा जैसा था। कौन? खलील अहमद सहारनपुरी बानी तबलीग इलियास साहब रहमतुल्लाह के शेख, तो उनके शेख का ही हाल था। फिर उनसे बैत हुए थे और उन्हीं से खिलाफत मिली थी हज़रत इलियास साहब रहमतुल्लाह को जो बानी तबलीग है, और 100 साल पहले तकरीबन जब ये काम शुरू किया था, तो ये तबलीग का मुबारक काम जो भाई जिस आलिम ने शुरू किया तो वो भी तो अल्लाह वाले थे, उनको खिलाफत मिली थी, वो खुद बुज़ुर्गों से बैत थे। इसी तरह मुफ्ती शफी साहब तकी उस्मानी साहब के वालिद साहब, और इसी तरह मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, बुज़ुर्गों का एक सिलसिला है जो अभी तक चलता आ रहा है, सब कहीं ना कहीं किसी से ताल्लुक़ थे। मौलाना शफी साहब भी मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह से बैत थे। तो सब अपने ऊपर अपने अपने वक्त पे हर दौर में बुज़ुर्गों ने, उलमा और मशायख ने अपने ऊपर बुज़ुर्गों का साया रखा है, बैत हुए, इस्लाह कराइए। और ख़ुद हज़रत बानी तबलीग इलियास साहब रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि मेरा इस तबलीगी जमात को बनाने का मकसद ये है कि आजकल लोग दीन से बेबहरा हो रहे हैं, मुझे बड़ा गम और फिक्र होती है। बताइए 100 साल पहले बेचारों को गम हो रहा है, उस वक्त तो कितना अच्छा माहौल होगा, पर्दा शरीयत, लेकिन उनको तकलीफ हो रही है कि अभी भी गुना है। तो अब बेचारे वो आज ये दौर देखते तो क्या उनका हाल होता। तो फरमा रहे हैं कि मेरा मकसद ये, जब लोग 3 दिन की नहीं, 10 दिन की नहीं, चिल्ले की नहीं, मसाजिद के नूरानी माहौल में आए, तबलीग में जाएं, तो फिर उनके अंदर दीनी शऊर पैदा हो जाए। दीनी शऊर पैदा हो तो मकसद ये तबलीगी जमात बनाने का, फिर लोग अहलुल्लाह की तरफ रुजू करें और तकवे के उसूल के लिए उनसे बैत हों, उनसे इसलाह कराएं अपनी। अब बताइए कि पूरी तबलीगी जमात को बनाने का मकसद क्या फरमा रहे हैं बानी तबलीग रहमतुल्लाह अलैह, कि वो अल्लाह वालों से ताल्लुक कायम करें ताकि तकवा नसीब हो, गुनाह छूटे। और खुद मौलाना शबली अली थानवी रहमतुल्लाह ने तकरीबन 70-80 साल पहले फतवा दिया है कि बुजुर्गों से बैत होना तो खाली सुन्नत है, नूर आला नूर, बहुत बड़ी प्यारी सुन्नत है और इससे बड़ी बरकत मिलती है, लेकिन फ़र्ज नहीं है बैत होना। लेकिन किसी अल्लाह वाले से इस नीयत के साथ इस्लाही ताल्लुक कायम करना कि हमारी ज़िंदगी से गुनाह निकल जाए, ये नमाज रोज़े की इतना फ़र्ज़ है ना, इस्लाही ताल्लुक कायम करना। नमाज रोज़े की इतना अल्लाह पूछेगा कि तुमने किसी से इस्लाही ताल्लुक क्यों नहीं कायम किया था कि तुम्हारी ज़िंदगी से गुनाह निकल जाते और तुम्हें तकवा नसीब होता। तो ये फ़र्ज़ ऐन है, आज इसको लोग, इसको भी कोई नफली चीज़ समझी जा रही है। भाई गुनाह से बचना फ़र्ज़ है ना, दलील भी एक आसान सी, गुनाह से बचना फ़र्ज़ है, तकवे से रहना फ़र्ज़ है, तो उसका मुकदमा यानी उसका हुसूल वो भी तो फिर फ़र्ज़ हो जाएगा, वो भी तो फिर फ़र्ज़ होगा। कैसे मिलेगा तकवा? सुन्नतुल्लाह यही रही है कि किसी से ताल्लुक़ के बाद अल्लाह पाक तकवा अता फरमाते हैं, वरना अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है, अल्लाह चाहे बगैर बराह रास्त किसी को तकवा दे दें, ऐसा भी हुआ है, लेकिन सुन्नतुल्लाह ये नहीं है। सुन्नतुल्लाह यही है जो बताई जा रही है कि किसी न किसी से ताल्लुक़ कायम करना पड़ता है, वास्ता अख्तियार करना पड़ता है। इसमें बड़े नफ़ात और बड़े राज होते हैं, बड़ी हिकमतें। अभी चूँकि वक्त नहीं है उन हिकमतों को बताने का, तो फ़िलहाल तो भी बस यही बताया जा रहा है जो अहम चीज़ें हैं। तो बात हो रही थी तकवे से मुतालिक, तो जब सोबतों में आदमी आता है तो फिर आने जाने की बरकत से कितने ऐसे अमराज़ रज़ीला यानी गुनाह होते हैं जो बंदे की ज़िंदगी से निकल जाते हैं, और कुछ गुनाह बचते हैं जिसकी उसको मजबूरन इसलाह करानी पड़ती है, पता ही नहीं चलता उसको कि कितने गुनाह उसकी ज़िंदगी से निकल गए। और आजकल का जो दौर है भाई, उसके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा अहमियत है, वरना नामुमकिनात में से है कोई हराम कारियों से, बदनज़री से और फहाशी उरियानियत से, ख़ास तौर पर जितने भी गंदे गुनाह या जितने भी गुनाह, उनसे आदमी बच जाए बगैर सोबत के। हाँ, कुव्वत-ए-इरादी से 2-4 दिन तो बच जाएगा, लेकिन इस्तिकामत नहीं होगी, तसलसल नहीं होगा, फिर दोबारा नफ्स और शैतान उस पर हमला करेंगे और फिर उसको पछाड़ देंगे। अगर हम दीन पर इस्तिकामत चाहते हैं, तकवे पर इस्तिकामत चाहते हैं, तो जहाँ जिससे मुनासबत हो, मशायख ने उसूल बताया कि दिल से दिल का मिलना ज़रूरी है, रज देख के, नाम देख के, शोहरत देख के मत जाओ, अपनी मुनासबत चेक करो, रूहानी ब्लड ग्रुप मैच कराओ। मुनासबत की क्या पहचान होती है? कहीं आदमी बैठे तो भाई उठने का दिल ना चाहे, उस शेख की बातचीत ऐसी हो कि दिल पे असर करे, एक कशिश हो, और कहीं बैठ के घबराहट हो, बातें समझ में ना आ रही हो, ये दिल में आ रहा हो उठ के मैं भागूं, बस ये अदब मुनासबत है, वहाँ ताल्लुक मत कायम करो, फिर वहाँ अपनी मुनासबत तलाश करो। तो ये थोड़ी सी मिसाल दे दी मुनासबत की, कहीं मुनासबत कायम हो जाए तो शुक्र अदा करो अल्लाह का कि मंजिल मिल गई, क्योंकि हर किसी को हर एक से मुनासबत नहीं होती। मुनासबत मिलने का मतलब ये है कि अल्लाह की विलायत का जो, अल्लाह की विलायत की दोस्ती की जो पहली सीढ़ी थी वो आपने उबूर कर ली। अल्लाह जिस मुनासबत भी कब देख करवाते हैं, कब किसको किसी से, जिसको अल्लाह पाक अपना बनाना चाहते हैं, जिसको जस्फ करना चाहते हैं, जिसको अपने रास्ते पे चलने की तौफीक देते हैं, तो अल्लाह उसी को किसी से मुनासबत अता कर देते हैं। बाज़ लोग कहते हैं मैं तो 50 जगह गया, मुझे किसी से मुनासबत नहीं हुई, तो ये बड़ी ख़तरनाक अलामत है, ये अल्लाह के उसके नाराज़ होने की अलामत है, अल्लाह सही नहीं है उसके अंदर की बातनी कैफियत। अरे ज़ालिम, तुम 50 पत्नी कहाँ का तुम चले गए, तुम्हें कोई अल्लाह वाला ही नहीं मिला, तुम्हें किसी से मुनासबत ही नहीं हुई, और तुम्हारे दिल पर पड़े हुए कुफल नहीं खुले, ये तो बड़ी ख़तरनाक अलामत है। ये तो आप कुरान पाक में अल्लाह फरमा रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ईमान वालों को नसीहत कीजिए, ईमान नसीहत जो ईमान वालों को नफ़ा पहुंचाती है, फ़ायदा पहुंचाती है। ये ज़ालिम कहता है कि मुझे किसी की नसीहत से फ़ायदा ही नहीं होता, मेरी कैफियत ही नहीं बनती, मुझे मुनासबत ही नहीं होती। तो हज़रत ने फरमाया कि उसके ईमान में कोई गड़बड़ है, कलमा पढ़े, तौबा इस्तग़फ़ार करे, अल्लाह को राज़ी करे, कोई बात अल्लाह को ना बुरी लगी हुई हो। वरना तो ईमान वालों की हालत तो ये होती है कि चाहे वो कितने ही फासिक फाजिर गुनाहगार क्यों ना हो, जब अल्लाह का जिक्र सुनते हैं, कहीं अल्लाह का फजल होता है, तो उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मुत्तकी अल्लाह वाला होगा वही उसके आंसू टपकेंगे भाई। अगर तू पूछे सिर्फ नेकोकारों को, अगर तू पूछे सिर्फ नेकोकारों को, फिर कहाँ जाए बंदा है गुनाहगार तेरा, फिर कहाँ जाए गुनाहगार बंदा तेरा। तो अल्लाह सब पर रहम फरमाते हैं। तो ये बता दिया भाई, तकवे के जो इनामात बता दिए भाई कि तकवा कैसे मिलेगा, और ये किस तरह से मिलता है, और फिर जब अल्लाह लालच भी दे रहे हैं, अल्लाह की रहमत है, आप देखिए कि अल्लाह पहले नामात तकवा बता रहे हैं, लालच दे रहे हैं, देखो ये फायदे होंगे, पता है दुनिया में आएंगे हम लोग तो हमें इन चीज़ों से वास्ता पड़ेगा, तो माली मुश्किलात होंगी, कहीं तंदरुस्ती होगी, किसी को जिल्लत मिल रही होगी, किसी कोई परेशान होगा, कोई बीमार होगा, अजीब अजीब तरह के मसाइल होंगे, तो अल्लाह पाक एक एक करके इनामात तकवा लालच दे रहे हैं कि देखो ये मसाइल कल मैं इन चीज़ों में रख रहा हूँ। और फिर अल्लाह ने फरमा दिया तकवा मुश्किल लग रहा है तो यहाँ चले जाओ, तो अल्लाह ने लालच भी दे दी, इनामात तकवा भी बताया, तकवे को हासिल करने की जगह भी बता रहे हैं कि इस कदर अल्लाह की मोहब्बत है। और अगर अल्लाह पाक ये बताने के बाद अगर फिर भी कोई बंदा ना समझे और वो अपनी डगर पर चलता रहे गुनाहों की पगडंडी के ऊपर, तो फिर अल्लाह इसके हाल पर रहम करे, फिर तो फिर कोई अजाब आके उसकी पकड़ करता है। अल्लाह, तो ये तकवा जो है ये आजकल मफकूद होता जा रहा है, माशरे से ख़त्म होता जा रहा है। हज़रत वाला रहमतुल्लाह हमारे मुर्शिद आरिफ बिल्लाह हज़रत अक़दस मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते थे, तकवा बहुत शॉर्ट होता जा रहा है मार्केट से, कहीं मिल जाए तो कदर कर लो, ये ख़त्म होता जा रहा है, ये आउट ऑफ स्टॉक होता जा रहा है माल। लेकिन मुत्तकी अल्लाह वाले क़्यामत तक रहेंगे, लेकिन हाँ माल कम है, ये माल कम है। तो भाई आजकल जो ये यूट्यूब पे और इधर जो ये बाज़ लोग आते हैं और बयानात करते हैं, तो खुदा रहा उनकी यूट्यूब पे इन लोगों के बयानात ना सुने। एक तो ये लोग अपनी शक्लें दिखा रहे होते हैं, कुछ गुंजाइश अगर दी है उलमा कराम ने दारुल क़ुरान मजबूरन दी है, क्योंकि अहले बातिल के इतने चैनल खुल चुके और उससे मुसलमानों के ईमान तबाह हो रहे हैं और गुमराह हो रहे हैं, उनके अकायद ख़राब हो रहे हैं, तो इस मजबूरी के पेशे नज़र कुछ उलमा कराम को इजाज़त दी थी कि भाई जिनके अंदर सलाहियत है वो फिर आएँ और उसी हिसाब से चलें जिस तरह बातिल लोग चल रहे हैं, ताकि अवाम नाफ तो गुमराह हो रही, क्योंकि गुनाह तो बाद में, ईमान ही ख़त्म हो गया तो फिर गुनाह सवाब तो बाद में बात का मामला है, ईमान ही खतरे में पड़ रहा लोग। इसी मजबूरी में ये फतवा दिया था उलमा कराम ने कि भाई वो आए फिर यूट्यूब पर या टी वी पर बयान करें, वो तो मजबूरी का मामला था, लेकिन फतवा है मजबूरी का। तकवा वही है कि ना आए, तकवा अपनी जगह कायम है, लेकिन उसमें बाज जो लोग आ रहे हैं ये उसमें बीच बीच में वो ऐड आते रहते हैं और उसमें फोश गंदे ऐड आते रहते हैं, मिनी स्कर्ट में लड़कियां औरतें नाच गाने म्यूजिक सब चलता रहता है, और उसमें जो ऑन और ऑफ़ करने का भी ऑप्शन होता है उस मुकर्रर के, तो वो अक्सर नहीं कर रहा है ऑफ़, तो उसके उनको फिर पैसे मिलते हैं, जितने उनके लिसनर और उनके क्लाइंट बढ़ेंगे उतना ज़्यादा फिर उनको डॉलरों में पेमेंट होती है, तो करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए। लेकिन भाई क्या किया तुमने, ये हराम काम करके नंगी औरतों के बदन की कमाई, जो गंदी चीज़ें आ रही हैं उसके पैसे खा रहे हो तुम, और दीन के लंबरदार बने हो, और तुफ ऐसे लोगों के ऊपर जो उनको सुनते हैं और उनसे मुतासर है, वाह वाह क्या बात करी, ये तकवा है, तकवे की तो धज्जियाँ उड़ा दी। तो जो आदमी खुद मुत्तकी नहीं है, क्या ऐसा कहते हैं ना, जैसी रूह वैसे फरिश्ते, तो जैसा जैसा पीर होगा वैसे ही फिर उसके मुरीदीन होंगे भाई। तो जो इस तरह की कमाई खा रहे हैं गंदी चीज़ों के साथ, आप दीन के लंबरदार बन रहे हो, फिर कहाँ लोगों का इनको इसलाह होगी, तकवा नसीब होगा, हाँ वक्त पास हो जाएगा। और फिर ऐसे ही लोग बैठ के फिर वो दीन के खिलाफ बातें कर रहे हैं खूबसूरत अंदाज में। एक ने तो यहाँ तक बोल दिया, ये सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा, उसने तो यहाँ तक बोल दिया कि ये बहुत हो गया तकवा अकवे की कहानियाँ, कि मर्द अलग औरत अलग, इस चक्कर में पड़ोगे तो लोग दीन की तरफ नहीं आएंगे, ना रसूल अल्लाह सल्लम का दौर है, ना सहाबा का दौर है, ना ताबईन का दौर है, कुरून उलों का दौर गुजर चुका, ना बलियों का दौर है, मतलब ये सब साथ बैठाओ बिग गैदरिंग करो, ये मिंबर रसूल पे बैठ के ये बातें हो रही हैं, अब ऐसे लोग भी आ चुके हैं और उनके आशिक ज़बरदस्त पूरी दुनिया में उनकी शोहरत है, तो क्या होगा फिर ऐसे मुसलमानों का, क्या बेड़ा गर्क होगा, तमीज़ ही नहीं है लोगों को, किसका बयान सुनना चाहिए किसका बयान नहीं सुनना चाहिए, किसकी सोबत उठानी चाहिए किसकी सोबत नहीं उठानी चाहिए, बस जिसकी शोहरत सुनी ख़त्म, उसके पीछे लबैक कह दिया। हज़रत वाला रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते थे, फिर भी शैतान बहुत मशहूर है इब्लीस, उसके हाथ पर बैत हो जाओ फिर जाके। तो आजकल लोगों के ईमानी लेवल का क्या हाल हो गया, उनका पैरामीटर क्या है, उनका कोई पैरामीटर ही नहीं है, चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, अजीब व गरीब लोगों का मामला है। हाँ लड़की कोई पसंद करनी है शादी की, नहीं फिर देखें आप 50 लड़कियां खंगाल डालेंगे, 5-5 साल तक लोग बैठे रहे, 10-10 साल बाद लोगों ने लगा दी कि ये मुझे मेरा आइडियल नहीं मिल रहा, और शादी नहीं करूंगा जब तक मेरी पसंद की, मेरे हिसाब से कोई लड़की पसंद की नहीं मिलेगी मुझे, ये हाल लड़कियों का भी बाग दफा सुनने को मिला। तो भाई दुनिया के मामले में तो हम इतनी छान पटक करते हैं, जब तक हमें आइडियल नहीं मिलता, दीन इतनी नाउजबिल्ला हमने थर्ड क्लास और बेकार चीज़ समझी हुई है कि जहाँ जिसके हाथ में चाह हमने हाथ में हाथ दे दिया, बस जहाँ लेके हमें फिरे वो, जबकि अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमा रहे हैं हर शख्स अपने इमाम के साथ उठाया जाएगा हशर वाले दिन। अल्लाह ने डरा दिया कि देखो हर शख्स अपने इमाम के साथ हशर वाले दिन उठाया जाएगा। तो अल्लाह डरा रहे, देखो दुनिया में तुम देख के अपना इमाम बनाना। ईमान, इमाम बनाने का मतलब है हमने अपना ईमान उसको दे दिया, वो हमें जिस खुतुवात पे चलाएगा हम चल पड़ेंगे। आज लोगों को इसकी तमीज़ ही नहीं है, बस जिसने जो बात बताई उल्टी सीधी उस पर चल पड़े। बस हो क्या रहा है असल में, क्योंकि लोग मुखलिस नहीं है अल्लाह को पाने के लिए, मुखलिस नहीं है। आज चूंकि मार्केट में हर तरह का मौलवी है ना, एक नंबर भी, दो नंबर भी, लिबरल भी, मुत्तकी भी, सच्चे अल्लाह वाले भी, हर तरह का। तो लोगों को सच्चे दीन से मतलब नहीं है, लोग अपने हिसाब से मौलवियों का इंतखाब करते हैं। जैसे कोई तखवे में बात करेगा तो बहुत से लोगों को चिढ़ होती है, अरे यार ये तो बड़े शिद्दत पसंद है भाई, इनसे हटो बचो, इन्होंने तो हमारा दाना पानी बंद कर दिया, सारे मजे अय्याशी हरामकारियां सब बंद करने की बात कर रहे हैं। तो भाई वो नहीं कर रहा है, सही दीन पेश कर रहे हैं, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी में तब्दीली नहीं आएगी। तो नहीं यार ये सही नहीं है, चलो यार वो जो है ना, वो जरा मैंने देखा, वो जरा लिबरल टाइप के है ना, लिबरल टाइप के हैं वो, प्रोफेसर साहब है ना, चलो उनकी सुबह उठाते हैं, वो ज़्यादा ये तखवे की बात नहीं करते। सबसे बड़ा मजहब तो और सबसे बड़ी चीज़ तो इंसानियत है, आप अपनी जात से किसी को तकलीफ ना दें, बस यही बहुत बड़ी नेकी है, बाकी दो दिल तय करो भाई, ये मकसद है। बाज़ लोग बड़े खूबसूरत अंदाज में बदमाशी की राहें लोगों को प्रोवाइड करते हैं, क्या कहते हैं भाई वो तो हाँ सब सही है, पहले नफी भी नहीं कर रहा, वो तो आप सब सही कह रहे हैं, लेकिन करके, अरे भाई जालिम जब कुरान हदीस की बातें सही है लेकिन करके क्या बात करो, मतलब वो शोशा क्या छोड़ेंगे जी। सबसे बड़ी जो अहमियत है वो इंसानियत की है, कि आप अपनी ज़ात से, सबसे बड़ा गुनाह क्या है, अपनी ज़ात से किसी को आप तकलीफ ना दें, बाकी अल्लाह पाक बहुत गफूर रहीम है। क्या मतलब, ज़रा खूबसूरत अल्फाज में ये बदमाशी की एक राह, एक शोशा छोड़ा जा रहा है, अपनी ज़ात से आप तकलीफ ना दें, बाकी अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, गुनाह हो जाते हैं। इतनी पिटाइयाँ फिर लगती हैं, पूरी दुनिया में मुसलमान पिट रहे हैं, कोई जगह ऐसी नहीं बची हुई जहाँ हम जलील और ख्वार नहीं हो रहे हो। कुत्ते बिल्ली को मार दें, कोई आपको मुकदमा चल जाएगा बाहर के ममालिक में, आपने कुत्ते को कैसे मारा। मुसलमान को रोज़ लोग मार रहे हैं, अप्रिशिएट किया जाता है, उनको इनामात दिए जाते हैं। आज हमारा मुसलमानों का खून कुत्ते बिल्ली से ज़्यादा सस्ता घटिया हो चुका है, बारा वजह ज़रा सोची हमने, क्योंकि हमने रसूल अल्लाह सल्लम को छोड़ दिया, अल्लाह के अहकाम की धज्जियाँ हमने बिखेर दी। आज रसूल अल्लाह सल्लम के कल्चर से ज़्यादा हमें यहूद व नसारा का, हनूत का, हिंदुओं का, इनका हमें कल्चर पसंद है। वो खुशी खुशी नहीं जब तक हिंदुओं की आमिजिश ना हो, शादियाँ होती हैं, मेहंदी माइयों, क्या है ये कोई हमारे मजहबी है, कोई मदीना शरीफ से आया कोई, या कोई इम्पोर्ट वगैरह आई थी कोई चीज़, ये सारा हिंदुओं का कल्चर है। ये माइयों, मेहंदियाँ, क्या है ये तीजा, दसवां, बीसवां, बरसी, चालीसवां, ये क्या है, ये सब हिंदुओं की ये रस्में होती हैं, लोगों को पता ही नहीं। ये सारा जब तक खुशी, वो खुशी खुशी नहीं जब तक हिंदुओं की आमिजिश ना हो, वो शादी शादी नहीं जब तक इंडियन गानों की धमा चौकड़ी ना हो, लोगों को मज़ा नहीं आता, दूल्हा दुल्हन को भी मज़ा नहीं आता जब तक इंडियन सॉन्ग जब तक नहीं चलेंगे, क्योंकि उनकी खुशियाँ फीकी रहेंगी। बाज़ लोगों ने सुन्नत शरीयत के हिसाब से शादी करी तो घर खानदान वाले आगे कह रहे हैं, अरे शादी का घर लग ही नहीं रहा, कोई मौत वाक़ हो गई क्या, मैयत का घर है क्या, ऐसी ऐसी बातें, ये काफिर हो जाता है ऐसी बातें बोलने से लोगों को, बेचारों को ये भी नहीं पता। ये फिर एक अलग चैप्टर है, गुनाह नहीं हो रहा है, गुनाह होते जा रहे हैं, नहीं गुनाह छूट रहा है, इस्तग़फ़ार कर लो भाई, कम से कम गुनाह मरोगे अगर तो ईमान के साथ मरोगे, गुनाह करने से काफिर नहीं हो जाता। लेकिन एक और नया ट्रेंड बकसरत चल रहा है, क्या, दीन मुखालफत, तंज करना, मुखालफत में बात करना, दीनी शियार को, निशानियों को, अल्लाह रसूल के बाज़ अहकाम को पसंद ना करना, और ये कह देना अल्लाह रसूल की बात के ऊपर ये तो सब मौलवियों की बातें हैं, मैं तो नहीं मानता, मैं तो वो मानता हूँ जिसको मेरा दिल दिमाग माने, इस्लाम का पट्टा उसकी गर्दन से उतर जाता है। अल्लाह ने ये भी कुरान पाक में फरमाया, और मरना तो मुसलमान ही मरना। क्यों कह रहे हैं भाई मुसलमान है क्या, मरेंगे नहीं मुसलमान, डरा दिया अल्लाह ने, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आज मुसलमान हो, मरते वक्त भी तो मुसलमान रहोगे। ये वाक़ियात भी आ चुके हैं कुरान और हदीस में, जब उठेंगे लोग अल्लाह पाक उनको काफिरों के साथ खड़ा करेगा, रोएंगे पीटेंगे, अल्लाह हम तो ईमान वाले थे, फरमाया थे ईमान वाले, बीच में तुम्हारा ईमान सल्ब हो गया था, तुम ऐसा ऐसा कह गए थे भाई। गुनाह हजरत वाला रहमतुल्लाह एक दफ़ा यही फरमाते थे, अगर किसी ने पक्का सोच लिया नहीं आना उसको दीन पर, तकवे पर नहीं आना, नहीं आए, उसने सोचा हुआ है कि मैं गुनाह करूँगा, भाई ठीक है गुनाहगार मर जाए, हजरत फरमाते थे, लेकिन काफिर होकर ना मरे। उसका क्या तरीका है कि कम से कम दीन मुखालफत में तो ना आए, दीन मुखालफत में तो ना आए। आज खुल्लम खुल्ला जबान खुलती है दीन की मुखालफत में। एक मेरे पास एक साहब आते हैं, वो उन्होंने दाढ़ी रखी, पहले दाढ़ी नहीं थी, अल्लाह ने उनको तौफीक दी माशाल्लाह, तो ऑफिस वालों ने इतना तंग किया, कोई कह रहा है भालू, कोई कह रहा है कैदी, कोई कह रहा है तालिबान, कोई कह रहा है कहाँ बम बांध के फटेगा भाई तू, ये मजाक उड़ाने वाले कौन है, मुसलमान, इन बिचारों को पता ही नहीं, गया इस्लाम, खत्म कहानी तुम्हारी। भालू कहते हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा, दाढ़ी तो आप सल्लम की सुन्नत है, और खाली आप सल्लम की नहीं, 125,000 अंबिया कराम ने दाढ़ी रखी, 125,000 सहाबा कराम थे उनकी दाढ़ियां थी, ताबईन तब ताबईन बुज़ुर्गाने दीन औलिया अल्लाह, क़यामत तक जो सालिहीन मोमिन मुत्तकीन अल्लाह वाले आते रहेंगे उन सबकी दाढ़ी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। उसको तुम भालू से तशबीह देते हो, बंदर बोल रहे हो तुम। कितने लोग कहते हैं जी मेरी शक्ल खराब हो जाएगी, अभी मैं बहुत चिकना हूँ। लोगों ने कहा, एक साहब ने कहा कि मैंने दाढ़ी रखी तो मेरी माँ कह रही है तूने अपनी शक्ल को क्या कर लिया, काली लग रही है तेरी शक्ल, काली तो पहले कितना तू गोरा चिट्टा खूबसूरत था, काला लग रहा है तू। माँ कोई हिंदू नहीं है, मुसलमान, मुसलमान घरानों का हाल बता रहा हूँ, नमाज रोजे वालों का ये हाल है। मतलब ये कि ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत बस नमाज रोजा कर लिया, सीजनल मुसलमान बन जाओ, 2-4 वक्त की नमाज पढ़ ली, रमजान है तो रोजे रख लिए, हज फर्ज हुआ हज कर लिया, ज़कात दे दी, बस 24 घंटे की जिंदगी में हमारी माशरत में ये सारे स्टाइल जो है वो सुन्नत शरीयत के हिसाब से नहीं गुजारने। शादी भी हम देख लें क्या होती है, अकीक़े को देख लें, अकीक़ा तो सुन्नत है और रद्द बला है, सदका होता है बच्चे का, लेकिन उसमें वो अशर होता है कि वही बात गुनाहों की आमाजगा के बला तो क्या टलती, मजीद बलाएं आने का अंदेशा होता है। तो आज पूरी दुनिया में हम लोग जलील व ख्वार हो रहे हैं, पिट रहे हैं, वजह क्या है, यही वजह कि नफसानी ख्वाहिश की इत्तेबा में हम लोग इतने आगे चले गए, हम नहीं जानते ना हम जानना चाहते हैं कि अल्लाह रसूल का क्या हुक्म है तकवे का। और अक्सर हमारे यहाँ जो दीनी जो मामलात होते हैं, जो तकरीबात वगैरह होती हैं, अक्सर उसकी इब्तदा अल्लाह के नाम से होती है, गुनाह की मजालिस जो हम लोग सजाते हैं उनकी इब्तदा अल्लाह के नाम से होती है। शायद पहले पिछले इतवार को भी मज़मून दिल में आया था मेरे, मैंने बोला था, जैसे आजकल हम स्कूलों में देखते हैं या कॉलेजेस में क्या आजकल बताते हैं लोग कि पहले कुरान पाक की तलावत होती है, ये कहलाते हैं आम लफ्ज़ों में, लोगों को दिखावा, लोगों को उल्लू बनाना। देखो भाई ऐसी बात नहीं है, हम नंग धड़ंग तो हैं लेकिन देखो हम खुदा को भूले नहीं है, थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ रहे हैं, उसके बाद पहले कुरान पाक की थोड़ी सी तलावत कर दी और उसके बाद फिर ढम 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 उसके बाद जो ऑर्केस्ट्रा बजना शुरू हुआ और उसके बाद जो डांस पार्टी का इनेकाद हुआ, फिर जो बेहूदगियाँ शुरू हुई कि अल्लाह हिफाजत फरमाए। अरे ज़ालिम तुम्हें अगर गंदे काम करने हैं, हराम काम करने हैं, तुम्हें फंक्शन करना है, ये फवाशी रियत फैलानी है, तो तुम उसकी इब्तदा तलावत कुरान पाक से क्यों करते हो? ये तो सख्त अल्लाह को अजाब को बुलाने वाली दावत है। जैसे उलमा कराम का फतवा है इस बारे में, अगर कोई शराब पीता है तो काफिर नहीं हो जाता, लेकिन अगर किसी ने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कह के शराब पी तो उसी वक्त काफिर हो जाएगा। वजह क्या है कि हराम काम करो तो अल्लाह को मत शामिल करो उसमें, ये तो बिल्कुल ही निडर हो जाने की अलामत है। बजाय अल्लाह के डरने के इब्तदा अल्लाह के कलाम से करते हो हराम काम की, फंक्शन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सब बजा रहे हो और गंदा काम करते हो है, और उसकी इब्तदा कुरान पाक से करते हो, तलावत कुरान पाक से। तो कभी किसी को ये फुर्सत ही नहीं कि जाके मसला मालूम करें कि भाई मेरा ईमान इससे बचेगा, भी ये नहीं बचेगा। तो हम लोग ये जितनी पिटाई हो रही है मुसलमानों की, उम्मत मुस्लिमा की, उतनी ज्यादा अल्लाह की नाफरमानियां बढ़ती जा रही हैं, और मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ तकवे के अंदर पोशीदा है, लेकिन हमारी उम्मत मुस्लिमा तकवे की तरफ नहीं आ रही। कितने मोबाइल पे ये मैसेज चलता रहता है कि भाई ये फलस्तीन के हालात खराब चल रहे हैं, 70,000 दफा आयत करीमा पढ़ लो, हसबुनल्लाह व निमल वकील पढ़ लो, ये पढ़ लो वो पढ़ लो। भाई ठीक है, अल्लाह के कलाम में भी असर है, कौन मना करेगा, लेकिन कुरान पाक की आयात और अहादीस मुबारक से जब हमने नतीजा खस किया, उलमा और मशाइख जो फरमाते हैं कि अल्लाह का वजीफा भी पढ़े उससे भी फायदा होगा, लेकिन असल मायने में, असल सही मायने में जो अल्लाह की जो मदद आएगी, जब वो उम्मत मुस्लिमा तौबा इस्तिगफार की तरफ आएगी, रुजू अल्लाह होगी और तकवे की तरफ आएगी, गुना जब तक अमली तौर पर नहीं छोड़ेगी, अल्लाह की रहमत और मदद नहीं आएगी जिस हिसाब से आनी चाहिए। दुआएं तो 80 साल से हो रही हैं काबतुल्लाह में, जब से पाकिस्तान बने उस शख्स 80 साल से रोजे रसूल पे हरम में दुआएं नहीं हो रही कि अल्लाह कश्मीर के मुसलमानों की मदद फरमा। 80 साल कम नहीं होते, बड़े बड़े औली अल्लाह ने वहां पे जाके दुआ कर रहे थे, कर रहे हैं और क्यामत तक करते रहेंगे, लेकिन कश्मीर की मदद क्यों नहीं आ रही? वही इज्जतें लुट रही हैं, वही लोग रोजाना मर रहे हैं, कोई जानना भी नहीं चाहता। मदद क्यों नहीं आ रही अल्लाह की? दुआओं के साथ, कहते हैं दवा के साथ, दुआ के साथ दवा भी करनी पड़ती है। अब कोई आदमी को ब्लड कैंसर हो और किसी बुजुर्ग के वाले दुआ कराता रहे, हजरत वो दुआ कर दें हजरत मेरा कैंसर सही हो जाए, वो ठीक है, बाप बुजुर्गों की दुआओं में ऐसी ताकत होती है, बगैर इलाज के अल्लाह शिफा दे दे। लेकिन आम कायदा क्या है भाई, दुआ भी कराओ और दवा भी लो, डॉक्टर के पास भी जाओ, दवा और दुआ दोनों करनी पड़ती है। तो दुआएं तो हो रही हैं, दवा तकवे में छुपी है, दवा कोई नहीं दे रहा, बस दुआ कर दें, दुआ कर दें बस कि मसला हल हो जाए, फलस्तीन की मदद हो जाए। भाई ठीक है, दुआ भी करें, तकवा कौन इख्तियार करेगा? हर वक्त मुसलमान नंगी फिल्में देख रहा है बैठा हुआ, मोबाइल पे हम लोगों के हाथ में रहता है, अच्छी बुरी सब चीजें देखते रहते हैं, और उसके बाद दुआ करिए हम हाथ उठाएंगे या अल्लाह फलस्तीन की मदद फरमा, तो क्या अल्लाह पाक सुनेंगे हमारी, कैसे मसाइल हल होंगे। एक शख्स आया, उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मुस्तजाबुद दावत बनना चाहता हूँ। मुस्तजाबुद दावत किसे कहते हैं, जिसकी कसरत से दुआएं कबूल हो, हर दुआ नहीं, जिसकी दुआएं कसरत से कबूल हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम गुनाहों को छोड़ दो, तकवा अख्तियार करो, तुम अल्लाह पाक तुम्हें मुस्तजाबुद दावत बना देंगे। तो पता चला कि मुस्तजाबुद दावत दूसरे लोग होते हैं कि जिनकी दुआएं कसरत से कबूल होती हैं। और फिर एक शख्स आया, उसी शख्स ने दूसरा सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बहुत बड़ा आलिम बनना चाहता हूँ कि मुझसे बड़ा कोई आलिम कोई ना हो, अल्लाह के मिशनों पर बहुत बड़ा आलिम। आपने इरशाद फरमाया तकवा अख्तियार करो, गुनाहों को छोड़ दो, सबसे बड़े आलिम बना दिए जाओगे। फिर उसने तीसरा सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बहुत बड़ा इबादत गुजार बनना चाहता हूँ कि मुझसे बड़ा कोई इबादत गुजार ना हो। भाई ज़्यादा इबादत, बड़ा इबादत गुजार, ज़्यादा जिक्र, ज़्यादा नफिल, ज़्यादा कुरान पढ़ना, ज़्यादा अल्लाह का जिक्र, ज़्यादा नवाफिल, ज़्यादा इबादत गुजार, यही समझ में आता है ना। फिर आपने इरशाद फरमाया गुनाहों को छोड़ दो, तकवा अख्तियार करो, अल्लाह के दरबार में सबसे बड़े इबादत गुजार लिख दिए जाओगे। यानी काम मत करो, एक काम मत करो, कौन सा काम, गुनाह का काम, इतने बड़े इबादत गुजार भी लिख दिए गए। हजारों नफिल पढ़ने की बात नहीं आ रही, अगर कोई दिन में 50,000 नफिल पढ़ रहा हो, 10 पारे पढ़ रहा हो और 1,000 नवाफिल पढ़ रहा हो, पूरी रात तहज्जुद पढ़ता हो लेकिन हराम काम से बाज नहीं आ रहा, तो बड़ा इबादत गुजार वो नहीं है। एक आदमी सिर्फ फराइज वाजिबात और सुन्नत मौक़द अदा करता है, फराइज वाजिबात और सुन्नत मौक़दा, बस कोई तहज्जुद, कोई इशराक, कोई चाश्त, कोई अवैन, कोई ज्यादा जिक्र नहीं कर रहा, सिर्फ फराइज वाजिबात सुन्नत मौक़दा और गुनाह कबीरा से बचता है, बस वक्त का वलीउल्लाह मुस्तजाबुद्दावात है, सबसे बड़ा आलिम है, सबसे बड़ा इबादत गुजार है, उससे बड़ा कोई है ही नहीं। हजरत वाला रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते थे कि काम मत करो और मजदूरी पूरी लो। कौन सा काम, गुनाह का काम। गुनाह काम करने पर फरमाते थे जान खर्च होगी, माल खर्च होगा, वक्त खर्च होगा, गुनाह करने भी पैसे लगते हैं। अब आदमी कार्ड डलवाता रहता है ना मोबाइल में, गंदी चीज़ें देख रहा है, माल खर्च हो रहा है उसका, आंखें खर्च हो रही हैं उसकी, दो दो चार चार घंटे दिमाग का कैल्शियम फास्फोरस ख़त्म होता है। आज नौजवान की, यंगस्टर्स की जो शक्लें पीली पीली हो गई हैं, या वो फिर अलग रिपोर्टिंग है जो सब लोग फ़ोन पर बता रहे हैं, 6-6, 8-8, 10-10 घंटे बच्चे बच्चियाँ देख रहे हैं, सिर्फ मुश्किल से वाशरूम जाने के लिए या खाना खाने के लिए बैठते हैं, वरना उनको नहीं पता कि दुनिया में हम रह रहे हैं किधर हैं, वो नेट की दुनिया में चल रहे हैं, नेट की दुनिया में। तो उससे निकालना। और अभी एक खातून का फ़ोन आया, अभी एक बच्ची थी, मेरे ख्याल 15-16 साल की उनकी बेटी, उन्होंने बताया वो हर वक्त 10-12 घंटे मोबाइल में लगाती थी, रात में कमरा बंद करके मोबाइल देखती थी वो। अब बताइए बंद कमरा करके क्यों देख रही है भाई, क्या दर्श कुरान देख रही है, कोई दूसरा ना सुन ले क्या है, गहरी बात पता ही है क्या चीज़ें देखते हैं। तो जब माँ ने एक वक्त आया, नहीं समझी, तो उससे ज़बरदस्ती छीन लिया मोबाइल, तो वो इतने जुनून में आई कि उसने किचन में गई, छुरी उठा के अपने पूरे जिस्म को जगह जगह से काट लिया, लहू लहान कर लिया। उसने कहा आपने मोबाइल लिया ना, ठीक है आप रखो मोबाइल, देखो मैं ये अशर करती हूँ। वो बेचारी माँ तो लरस के रह गई, उसने हाथ जोड़े और कहेंगे ले मेरी बच्ची तू मोबाइल ले ले, तू अपने आप को मत काट, तुझे जो देखना है तू देख। इस वक्त औलादे आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं, पागल हो चुकी हैं शहवत से, लेकिन किसी को कुछ नज़र नहीं आ रहा। उलमा कराम फतवे दे रहे हैं कि घर में जब जवान बेटी अकेली हो तो बाप घर से बाहर आ जाए, घर में जब जवान बेटी अकेली हो और बाप ज़्यादा बूढ़ा ना हो तो घर से बाहर आ जाए, फतवा दे रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, इस कदर कसरत के साथ थप्पियों की थप्पियां भर गई हैं बाप बेटी के जिना में। आज इन मौजूदात पर बात करते हुए लोगों को शर्म आती है, पता नहीं कौन सी बातें हो रही हैं। अरे भाई जिन गुनाहों की वजह से अल्लाह के अजाब आ रहे हैं बुरी तरह से कम उसकी तो बात करो, अदबो अदाब से करो, ढके छुपे अंदाज में करो, लेकिन कुछ तो हम बोले, किस तरह स्लो होगी लोगों की, इसमें शर्म थोड़ी है। अमल बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, तबलीग का जो जुज है कुरान पाक में, जो अल्लाह ने हुक्म दिया नेकियों का हुक्म करना और बुराइयों से गुनाहों से मना करना, अमल बिल मारूफ तो हो रहा है, नहीं अनिल मुनकर के लिए कौन आएगा, फरिश्ते उतरेंगे, जिन्नात आएंगे, कोई एक्स्ट्रा फोर्स आएगी, कौन बोलेगा कि भाई अपनी बहन बेटियों को एक काले टाइट पजामे रंग बिरंगी ना पहनाओ, पिंडलियां मत खोलो। अब तो काले टाइट पजामे भी चल रहे हैं, ऊपर से टी शर्ट भी उचकी हुई चल रही है, भाई सब कुछ दिखता है, कोई पूछने वाला नहीं है ये बाप भाई। और दुख कब होता है, जब उसमें बादशरा लोग देखता हूँ, बाप है, शौहर है, या कोई बेटा है, जो भी महरम है, वो एक मुट्ठी दाढ़ी और उसने टोपी भी पहनी हुई है माशाल्लाह, टखनों से ऊपर पर, खुद तो माशाल्लाह सरापा दीन, और बेटी को देखो है? तो वो बिल्कुल ही कुछ, और बहन को देखो तो बिल्कुल ही लगेगा ही नहीं कि भाई इन्हीं की महरम है, ये क्या हो रहा है। तो नहीं अनिल मुनकर कौन करेगा, गुनाहों से बचने की बात कौन करेगा। और कुरान पाक और हदीस मुबारका में ये भी मफहूम आ चुका है कि अगर आदमी अमल बिल मारूफ करता भी रहे, मीठी मीठी बात करता भी रहे दीन की, लेकिन अगर उसने गुनाहों से बचने के ऊपर बात नहीं करी तो कुरान हदीस का खुलासा अल्लाह का अजाब आकर रहेगा। तो नहीं अनिल मुनकर की तबलीग करना ये हम पर वाजिब है, हम खुद को भी अपने आप को बचा लेंगे और जो सुनेंगे वो भी बच जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बात तो हम चलाएं, नहीं तो अजाब आके रहेगा, अजाब आके रहेगा। शेखुल हदीस जुकरिया साहब रहमतुल्लाह ने फजाइल तबलीग में यही वाकयात सारे लिखे हुए हैं कि नहीं अनिल मुनकर के ऊपर लाजमी बात करनी है। लेकिन आज लोगों को शर्म आती है, यार मैं कैसे कह दूं खुल के। भाई खुल के मत बोलो, ढके चुके अंदाज में बोलो, प्यार से बोलो, मोहब्बत से बोलो, अदब से बोलो, किस तरह से बोलो तो सही। आजकल स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कोचिंग सेंटर ये जिना के अड्डे बन चुके हैं, बनते नहीं यार, बन चुके हैं। कौन पूछने वाला है, बाप से कोई पूछे कि भाई तुमने अपनी बहन बेटियों को ये लड़कों के साथ दाखिल करा दिया, तुम्हें पता नहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी का क्या माहौल है। दूसरे शैतान में क्या सुर फूंक दिया, इंतहाई अच्छे गुमान का, नहीं नहीं वो तो आप सही कह रहे हैं लेकिन मेरी बेटी मेरा बेटा वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं। क्यों भाई, राबिया बसरी है। कुरान और हदीस से साबित है कि जब लड़कियां और लड़के जब साथ होंगे तो उनमें शैतान आता है। आप सुसलम इरशाद फरमा रहे हैं हदीस शरीफ का खुलासा, जब कोई लड़का लड़की जब तना होंगे तीसरा लाजमी शैतान आएगा। यहां तक मशाइख ने फरमाया कि अगर किसी कुतुब अल्लाह के वली को, कुतुब या अब्दाल के मुकाम का कोई बंदा हो और राबिया बफरी जैसे लेवल की कोई खातून हो, यानी वो विलायत का मेयार हो, और दोनों में दोनों को यकजा कर दो, तनहाई उनको दे दो, लाजमी तीसरा शैतान आएगा। उलमा कराम ने किताबों में रखा है कि इबलीस के शागिर्द चेले ऐसे होते हैं जिनकी मुख्तलिफ हेड में मुख्तलिफ ड्यूटीज होती हैं। कुछ शैतीन की ड्यूटी होती है कि वो जब मर्द औरत जब साथ होते हैं तो उनकी शर्मगाहों के ऊपर वो शैतीन दम करते हैं जिससे शहवत भड़कती है, अब फिर जिना करना उनके लिए आसान हो जाता है। लेकिन किसका, आज लोग कहते हैं इन बातों के ऊपर भी, नहीं वो तो आप सही कह रहे हैं, असल में इंसान को अपने ऊपर भी विल पावर होनी चाहिए, आदमी को अपने ऊपर भी नफ्स पे कंट्रोल होना चाहिए। अल्लाह ने आदमी को बड़ी सलाहियत दी है। तो एक बुजुर्ग ने बड़े गुस्से में जल के कहा कि इस तरह के लोग नौजबिल्ला अल्लाह रब्बुल आलमीन को बेइल्म और बेवकूफ करार दे रहे हैं, इसका यह मतलब निकलता है। अल्लाह फरमा रहे हैं कुरान पाक में एक जगह, और वही ना जाने जिसने पैदा किया, और वही ना जाने अपने बंदों को जिसने पैदा किया। अरे अल्लाह जिसने हमें पैदा किया वो फरमा रहे हैं अल्लाह पाक, वला तकरबु जिना, कि जिना करना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत दूर की बात है, जिना के करीब भी मत फटको। क्या मतलब कि जिन अवामिल से, जिन असबाब से, जिन हरकतों से, जिन अमाल से जिना होने का अंदेशा हो उन असबाब को भी अपने से करीब मत करो। जिसमें मोबाइल फोन हर वक्त अपने साथ रखना, या एंड्रॉयड सेट स्मार्टफोन, LCD घर में रखना, इसी तरह लड़के लड़कियों के साथ माहौल में रहना, ऐसे कॉलेज इंस्टीट्यूशन में दाखिला लेना जहां ये चीज हो, तो ये अपने आप को असबाब गुनाह के करीब कर रहे हैं। अब जिना होने का अंदेशा है। हजरत वाला रहमतुल्लाह इसके मिसाल में ये फरमाया करते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आदमी को पानी में उतरे और गीला ना हो, ऐसा हो सकता है? पानी में उतरे हो तो गीले तो हो गए, तो बचने का क्या तरीका, गीले होने का, पानी में उतरो ही मत। अल्लाह वाला हम समझते हैं अल्लाह वाले वो हैं कि जिनका नफ्स मिट जाता है, शायद उनमें शहवत नहीं होती, उनके अंदर हुब्बे बा नहीं होती, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं भाई, इनको कुछ भी नहीं होता। तो ये एक गलत आवाम में शोहरत है अल्लाह वालों की। हजरत वाला हमें इरशाद फरमाते थे अल्लाह वालों को तो अक्सर आम लोगों से ज्यादा उनके अंदर शहवत होती है। वजह क्या होती है? तकवे की बरकत से। तकवे से रहते हैं, अपनी भड़ास नहीं निकालते, वो जज्बात उठते रहते हैं अल्लाह के लिए, अपने दिल को कुचलते रहते हैं, नफ्स को मारते रहते हैं, तो लताफत और हिस्स उनके अंदर बहुत बढ़ जाती है, तो उनके अंदर भी शहवात बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अल्लाह पर फिदा होते रहते हैं, इसलिए वो अल्लाह वाले। तो अल्लाह वाले की तारीफ ये होती है कि अल्लाह वाला असबाब गुनाह को अपने से ना करीब करता है ना उसके करीब जाता है, इसलिए इट्स कॉल्ड अल्लाह वाला। इन औलियाहु लिलमुत्तकून, अल्लाह कुरान पाक में फरमा जो मेरा वली सिर्फ वो है जो तकवे से रहता है। तो अल्लाह ने ये एक तरह से पहचान भी बता दी कि तुम अल्लाह वालों की पहचान क्या होती है, वो तकवे से रहते हैं, और तकवे के एहतमाम से रहने के लिए असबाब गुनाह से अपने आप को दूर रखते हैं। अल्लाह वाला होने का मतलब ये नहीं लड़कियां अपने पास बिठा ली, औरतों को भी बिठा लिया, मर्दों को भी बिठा लिया, दरस कुरान चल रहा है। आजकल नया स्टाइल आ गया ना, तो बहरहाल तो मतलब क्या है कि आजकल दरस कुरान चल रहा है उसमें औरत मर्द सब साथ बिठा के चल रहे हैं, और मौलवी साहब जो कोट पैंट में चल रहे हैं वो आजकल, दाढ़ी वाड़ी उनके नहीं है। तो आजकल ये नया ट्रेंड दिया जा रहा है लोगों को कि देखो कोई जरूरी नहीं है, ये सब मौलवियों की पुरानी फरसूदा बातें, कि जी औरतें अलग मर्द अलग, ये सब बेकार की बातें, इसको हटाओ। अब तो ये इस तरह से तो ये नया जदीद इस्लाम पेश किया जा रहा है। जब अभी से मेहनत शुरू हो रही है तो 10-20 साल के बाद इसका रिजल्ट सामने आएगा। ये तकवेगी को बात करने वाले भी लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि ये आम बात हो जाएगी। जैसे मिसर में ना जामियतुल अजहर यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, वहाँ के आलिम मुफ्ती कोट पैंट टाई में होते हैं, दाढ़ियाँ उनकी मुंडी भी होती हैं, आधी इंच होती है, और मिनी स्कर्ट में लड़कियाँ औरतें सब साथ बैठी होती हैं और वो बात कर रहे होते हैं। तकवा क्या है ये कुछ नहीं पता, ये कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम बता रहा हूँ। इसी तरह लबनान मिस्र में दाढ़ी रखने के ऊपर सरकारी तौर पर पाबंदी है। मेरे खालू हैं वो जद्दा में, उन्होंने बताया कि वो उनके अरबी कोई दोस्त है, वो शायद मिस्री थे वो, तो एक मुट्ठी दाढ़ी थी उनके, जाने से 2 दिन पहले उन्होंने देखा दाढ़ी साफ, तो मैं बड़ा मुझे दुख हुआ, मैं चीख पड़ा, मैंने कहा ये क्या माँ हाजा दाढ़ी साफ कर दी तुमने, तो वो कहने लगा यार आपको नहीं पता। क्या नहीं पता, कह रहे हैं मिस्र जा रहा हूँ अपने शहर, वहाँ एंट्री नहीं है जब तक मैं क्लीन शेव नहीं हूँगा, तो कह रहे हैं मैं यहाँ पर आता हूँ जद्दा पे तो दाढ़ी रख लेता हूँ, जाता हूँ तो दाढ़ी साफ करके जाता हूँ। ये मुसलमानों का हाल चल रहा है सख्त, क्योंकि ऑर्डर ऊपर से यही है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अल्लाह, तो कहाँ तक भाई बात करें, इस वक्त तकवे की वजह से, कमी की वजह से पूरे पूरे ख़ानदान तबाह हो रहे हैं, इस वक्त कहाँ तक बात करें। तो ये बेटी जो बता रहा था, उलमा कराम जो फतवे दे रहे हैं कि बकसरत जिना इस वक्त बाप बेटियों में हो रहा है कसरत के साथ, तो इसलिए फतवा दिया जा रहा है। उलमा कराम ने कहा कि इसे बदगुमान नहीं हो रहा है, ना किसी पर हम शक कर रहे हैं, ना किसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन जिस कसरत के साथ थप्पी की थप्पियाँ आ रही हैं उसकी रोशनी में फैसला दे रहे हैं कि भाई जब ऐसे मामला हों तो घर से बाहर आ जाए। महरम ना महरम में जो जिनाकारी चल रही है वो तो अलग ही है, महरम रिश्तों में जिना सख्त चल रहा है बहुत। कभी किसी बड़े दारुल इफ्ता में जाइए और वहाँ जाके किसी मुफ्ती साहब से पूछिए जो दारुल इफ्ता में बैठते हैं कि आजकल हमारी हालात तबाही के किस हद तक जा रहे हैं। और 90% जो वजह जो साहिब नज़र अहले नज़र जो वजह बता रहे हैं ये फवाशी यानी की वही घूम फिर के बाद आती है मोबाइल सेट की, ये स्मार्टफोन का जो इस्तेमाल है। अभी तकी उस्मानी साहब द्वारा कदम होगी 1 घंटे का बयान किया सिर्फ इसी मजमून के ऊपर, मोबाइल की तबाहकारियों के ऊपर, के बददीन बेदीन फासिक फाजिर नहीं, जो मुत्तकी लड़के मर्द और औरतें थी, मुत्तकी वाकई मुत्तकी लोग थे, उन्होंने नफ्स पे भरोसा किया और बर्बाद हो गए, जिनाकार तक बन गए, तबाहियां मच गई हैं, तबाहियां मचा दी इसने। अभी कोई आके थोड़ी बताएगा हमारे घरों में जी तबाही मच गई, मैं स्मार्टफोन देख रहा था। ये तो दारुल इफ्ता से उलमा और मशायख से या खानकाहों में जहाँ लोग इस्लाह के नहीं आते हैं, जो खतूत आते हैं और फिर दारुल इफ्ता में जो खतूत आते हैं वहां से फिर बात घूमते घूमते फिर इस तरह गर्दिश करती हैं, तो हम बयानवत में बताते हैं भाई ऐसा शोर है, और न चुपके चुपके तो बहुत कुछ हो रहा है काम, तो फिर अल्लाह के अजाब भी फिर चुपके चुपके आते हैं और फिर अचानक अचानक फिर बड़ा अजाब भी फिर आ जाता है। तो अभी जो कलाम था क्या था कि अल्लाह अभी भी वक्त है हम अल्लाह से रोके माफ़ी मांग लें तौबा कर लें, वो बड़ा मोहब्बत करने वाला है, वो रब हमसे बहुत मोहब्बत करता है, हमें बख्श देगा, हमें माफ़ कर देगा। तो इस फितने के दौर में जल्द से जल्द जहाँ जिसको जिस किसी अल्लाह वाले से मुनासबत हो अपना साया किसी अल्लाह वाले के अपने ऊपर अपने किसी अल्लाह वाले का साया रख ले, तो इंशाल्लाह फितने के दौर में वो दज्जाली फितरों से बच जाएगा, फाशियानी से और हर गनों से इंशाल्लाह वो बच जाएगा। और खाली बैत नहीं, खाली ताल्लुक नहीं, बल्कि गहरा ताल्लुक अल्लाह के, नहीं इसलाह कराए, शर्म ना करे, कोई गुनाह अगर उससे नहीं छूट रहा तो इसलाह कराए, तन्हाई में मिलके अकेले में मिलके सबके साथ नहीं करता तो इसलाह करा ले इंशाल्लाह। तो इसलाह करा ली तो अजाब नहीं आएगा, क्योंकि उसने इसलाह करा ली। अब जो इसलाह नहीं कराएगा आदतन हराम काम मुबतला रहेगा, अब परेशानी अब बलाएंगी, तो इसलाह कराने से अजाब हट जाते हैं, क्योंकि अल्लाह देख लेते हैं मैं क्या उसको सजा दूँ, ये तो बेचारा खुद परेशान है, तो खुद फिक्रमंद है अपने इस गुनाह से, ये तो पहले ही इसलाह के प्रोसेस में आ गया, तो अल्लाह उसे क्यों डराएंगे परेशानियाँ भेज के। उसको डराते हैं जो अल्लाह से नहीं डरता, उसको डराया जाता है जो निडर हो जाता है अल्लाह से। अल्लाह बस जो कुछ भी बोला गया अल्लाह पाक उस पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, कामिल तक़वा नसीब फरमाए। हज़रत वाला रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते थे हर बयान के आखिर में ये 5 अमाल लाजमी बयान कर दिया करो, भले मुख्तसर से सही, छोटा किताबचा भी मिलता है कि वलीउल्लाह बनाने वाले 5 अमाल। वो 5 अमाल क्या है भाई, 2 अरब के करीब मुसलमान हैं लेकिन बहुत कम मुसलमान हैं जो ये 5 अमाल करते हैं, कहने को तो सिर्फ 5 हैं। तो और इसका ताल्लुक नवाफिल से नहीं है, नफली अमाल नहीं है, बल्कि फ़राइज़ और वाजिबात से, यानी फ़र्ज़ और वाजिब हैं, फ़राइज़ में से ये 5 अमाल, वाजिबात में से, यानी हर मुसलमान औरत और मर्द पे फ़र्ज़ हैं। पहला, कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ने का अहतमाम करें, बग़ैर तजवीद के पढ़ना सख्त गुनाह है, जब तक तजवीद दुरुस्त नहीं हो रही तो पढ़ते रहें, यह मतलब नहीं है कि आदमी डर के मारे पढ़ना छोड़ दें, मतलब ये फिक्र करे, किसी कारी साहब से 1.5-2 महीने में नूरानी कायदे से पढ़ना शुरू करे तो इंशाल्लाह ताला उसका कुरान पाक दुरुस्त हो जाएगा। हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए। अगर हमने दो चश्मी ही से आवाज़ निकाल दी सीने से, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हा कर दिया हा के बजाय हा, तो उसका मतलब हो जाएगा तमाम ऐब और नकाइस अल्लाह के लिए। तो मतलब कुछ के कुछ हो गया। कल्ब माने दिल, दो नुक्ते वाला खौफ जो हलक से आवाज़ निकालते, खड़े काफ से पड़ा कल्ब, कल्ब माने कुत्ता, तो कहाँ दिल और कहाँ कुत्ता, तो एहसास ही नहीं है हमें। बहरहाल दूसरा अमल क्या है, एक मुट्ठी दाढ़ी तीनों तरफ से रखना वाजिब है, चारों इमामों का इजमा, किसी का इख्तलाफ नहीं है, और मुझे बिल्कुल बारीक रखें। तो बड़ी मुझ के ऊपर आप सल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं उसकी शफात नहीं करूँगा, मेरे हौज़े कौफर के करीब ना है, जन्नत में नहीं जाना होगा। नंबर दो, मुनकर नकीर कबर में गुस्से की हालत में आएंगे, एक तो खबर फिर गुस्से की हालत में आ रहे हैं मुनकर नकीर। नंबर तीन, कबर में उसे दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। ये सिर्फ बड़ी मुझ के ऊपर मामला है, बारीक मूछ रखें ज़रूरी है। अगर किसी को मूछे रखने का शौक है तो जायज़ दर्जा ये, होंठ का किनारा खुला रहा है, होंठ का किनारा खुला रहा है, ऊपर ऊपर मूछ रखें। अगर चंद बाल भी अगर होंठ के किनारे के ऊपर आ गए तो फिर वो लंबी मूछ के हुक्म में मामला आ जाएगा। और तीसरा अमल है, मा अस्सला मिनल काबैनी मिनल ज़ारी फिन्नार, ऊपर से आने वाला लिबास जिससे टखने छुपेंगे, जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। तो मर्दों के लिए दो हालतों में टखने खोल के रखना वाजिब है, जब हम खड़े हों और जब चल रहे हों, टखने खोल के रखना वाजिब है। तो और दूसरे हदीस शरीफ में आप ने क्या अर्शाद फरमाया, अल्लाह ऐसे बंदे से मोहब्बत ही नहीं रखता जो अपने टखनों को छुपा के रखता है, क़यामत तक मौत तक उस बंदे से अल्लाह मोहब्बत नहीं करेंगे। और तीसरे हदीस शरीफ में आपने अर्शाद फरमाया, उस शख्स की तो नमाज ही कबूल नहीं होती जो दौरान नमाज अपने टखनों को छुपा के रखता है। तो उल्टा दौर चल रहा है, ख़वातीन टखने और पिंडलियाँ खोलने में लगी हैं, मर्द छुपाने में लगे हैं। मुल्ला कट शलवार बना दो, ख़वातीन जाती हैं, तो डरना चाहिए अल्लाह से। और चौथा अमल क्या है, कुल नज़रों की हिफाजत करें तमाम नामहरम लड़कियों और औरतों से। अगर फरमाते थे कि वलीउल्लाह लोग क्यों नहीं बन रहे, तीन अमल तो अक्सर आपको लोग मिलेंगे, एक मुट्ठी दाढ़ी भी, तजवीद भी अच्छी है माशाल्लाह, टखने सबर पाँचे भी। और इसने फरमाया चौथा जो अमल आ रहा है ये है जिसकी वजह से अक्सर लोगों की नानी मरती है, नानी मरनी महावरतन कहा जाता है, जिससे इन्हें तकलीफ़ होती है। तो वो अमल क्या है, कुल्लिल मुमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ुज़ू फुरूजहुम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मोमिन मर्दों से कह दीजिए कि अपनी बाज़ निगाहों की हिफाजत करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। अल्लाह पाक कुरान पाक में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए नज़रों की हिफाजत का हुक्म दे रहे हैं और शर्मगाहों की हिफाजत का हुक्म दे रहे हैं। वजह क्या है, नज़र की हिफाजत के साथ शर्मगाह की हिफाजत का हुक्म क्यों दे रहे हैं, कि जिसकी नज़र महफूज नहीं रहती उसकी शर्मगाह भी महफूज नहीं रहती। यानी ज़िना की पहली सीढ़ी होती है, इब्तिदा होती है नज़रबाजी। और आप सुन ने क्या, और ख़वातीन को अल्लाह पाक ने अलग हुक्म दिया आगे कुरान पाक में आ गई इसी आयत के बाद, कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मोमिन ख़वातीन को भी, औरतों को भी हुक्म दें कि वो अपनी निगाहों की हिफाज़त करें, बाज़ निगाहों की हिफाज़त करें और शर्मगाहों की हिफाज़त करें। मर्दों को अलग, ख़वातीन को अलग हुक्म दे रहे हैं। और अल्लाह ने हर हुक्म की वजह नहीं बताई, लेकिन नज़रों की हिफाज़त का हुक्म देने के बाद अल्लाह आगे फरमा रहे हैं, ये मैं नज़रों की हिफाजत का हुक्म तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम्हारा तस्किया हो जाए, तस्किया नफ्स तुम्हें हासिल हो। लोग कहते हैं ना, तस्किया नफ्स क्या चीज़ होती है, बातिन की इस्लाह, दिल का पाक हो जाना, मुजल्ला मुसफ़ा होना, जिसका तस्किया हो जाता है वलीउल्लाह बन जाता है। तो अल्लाह वजह बता रहे हैं, नज़रों की हिफाजत से तुम्हारा तस्किया नफ्स तुम्हें हासिल हो जाएगा, यानी तुम्हारा जिस तरह ज़ाहिर बन गया तुम्हारा माशाल्लाह, तुम्हारा बातिन भी चमक उठेगा, फिर वलीउल्लाह बन जाता है ऐसा इंसान जिसका तस्किया नफ्स हो जाता है। और पांचवा अमल और जो चौथा अमल, तो ये कुरान पाक की आयत है। और रसूल सल्लम ने क्या फरमाया हदीस शरीफ में, लानो नाजिरा मंजूर है, अल्लाह पाक लानत फरमा जो बदनजरी करे। किसकी दुआ, रसूल अल्लाह की दुआ, इमामुल अंबिया की बददुआ आ रही है कि अल्लाह लानत फरमा, लानत की बददुआ दे रहा हूँ उन पर जो दूसरों की माँ बहन बेटियों को, लड़कियों को, औरतों को देखते रहते हैं, बदनजरी करते रहते हैं, अल्लाह उन पर लानत भेज। और अल्लाह उन पर भी लानत फरमा जो अपने आप को बदनजरी के लिए पेश करे। उसमें वो ख़वातीन हमारी बेचारी माँ बहनें आ जाती हैं कि जो हर एक नामहरम के सामने आ जाती हैं, जैसे बहनोई और नंदोई, इसी तरह कज़न्स जो भी नामहरम होते हैं, और क्या कहती हैं, शैतान ने क्या कान में कह दिया, अरे ये तो अपने, अरे अपने नहीं हैं। कुरान पाक में फरमा रहे हैं नामहरम, अल्लाह ने दो चीज़ें बताई, महरम और नामहरम, अपने गैर की बात नहीं है। अपना जिससे पर्दा वाजिब नहीं है वो शौहर होता है, वो बेटा होता है, वो भाई होता है, चचा मामू ताया, ये रिश्ते होते हैं भाई महरम, और इनसे पर्दा नहीं करना। बाकी जितने भी हैं जिनसे निकाह हो सकता है वो उनसे पर्दा करना लड़की पे औरत पे वाजिब है। तो देखने वाले भी लानत की बद्दुआ और दिखाने वाली पर भी लानत की बद्दुआ आ रही है। और आप सबने क्या अर्शाद फरमाया एक और हदीस में, कि या तो तुम लोग, बिल्कुल दो टोक अल्फाज में हुक्म दे रहा हूँ, या तो तुम लोग नजरों की हिफाजत करोगे और शर्मगाहों की हिफाजत करोगे, नहीं तो तुम लोगों की सूरतों को मस कर दिया जाएगा। मस बताइए कितना सख्त अल्लाह की नाराजगी। लेकिन आज तो बड़े बड़े जो दीनदार लोग होते हैं वो भी बदनजरी के मजरों में हैं अक्सर, इल्ला माशाल्लाह अल्लाह जिसको बचाए। तो इससे बचें, नजरों की हिफाजत करें। और पांचवा अमल जो है वो दिल में गंदे ख्यालात लेकर ना आए, जानबूझ के गंदे ख्यालात दिल में लाना जमाना और उसमें मशगूल हो जाना सही नहीं है। उससे इन चारों अमाल का अमाल से जो नूर दिल में पैदा होता है विलायत का, तकवे का, वो सारा बर्बाद हो जाता है। दिल को पाक साफ रखें, ये बैतुल्ला है, अल्लाह का घर है ये। तो क्योंकि ये दिल मरकज़ है, जो भी रूहानियत जो भी आदमी को अल्लाह की मार्फत हासिल होती है वो दिल को हासिल होती है, और फिर उसके बाद उसके मामला आगे बढ़ते हैं। तो दिल को पाक साफ रखना है गंदे ख्यालात से। हाँ, शैतान बाज़ दफ़ा वसवसों में मुब्तला कर देता है, वो एक अलग मामला है। उसका तरीका ये किसी जायज़ काम में लग जाएँ, वजू कर लें, किताब पढ़ने लगें, तो अपनी पोजीशन को चेंज कर लें, उस हालत में बैठे ना रहें, तो वो कैफियत इंशाल्लाह उससे फिर बाहर हो जाएंगे। और इन पांचों माल की तौफीक किसी भी अल्लाह वाले से जहां मुनासबत हो वहां ताल्लुक कायम कर लें, तो इंशाल्लाह थोड़े अरसे में एक एक करके सारे पांचों माल पर उनको तौफीक हो जाएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, या रब्बे करीम या अरहमर रहीमीन। या अल्लाह, जो कुछ भी बोला गया सुना गया अल्लाह उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, कहने सुनने में वो गलती कमी बेशी होगी तो शान रहमत से बख्श दे, माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, हमारा मिल बैठना जो तेरी रजा तेरी खुशी की नहीं है, या अल्लाह इसकी बरकत से हम सब के तमाम गुनाहों को बख्श दे, में गुनाहों से ऐसा पाक साफ कर दे कि माँ के पेट से मैं भी पैदा हूँ, ऐसा पाक साफ कर दे। या अल्लाह, हम सबको कामिल तकवा नसीब फरमा, कामिल तकवा नसीब फरमा। या अल्लाह, नफ्स और शैतान की इत्तेबा से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह, अपनी हमारे कुलूब में अपनी इतनी मोहब्बत खशियत डाल दे कि अल्लाह पाक हम नफसानी ख्वाहिशात को कुचल सकें। या अल्लाह, सच्चा अपना आशिक बना ले। या अल्लाह, अपना आशिक बना ले। या अल्लाह, हाजरीन मजलिस में से जिस जिस के दिल में जो भी जायज़ हाजात हैं, अल्लाह तू जानने वाला है, हम सब की जायज़ हाजात को पूरा फरमा दे। जो भी यहाँ है महरूम ना जाए, दुनिया भी बना दे और आखिरत भी बना दे। या अल्लाह, या अरहमर रहीमीन। या अल्लाह, जितने भी मुफलिस नादार गरीब हैं, अल्लाह उन सबको हलाल रिज़्क़ से गनी फरमा। जितने भी बीमार हैं, अल्लाह उन सबको शिफा कुल्ली नसीब फरमा। या अल्लाह, जितने भी मुसीबत ज़दा हैं, अल्लाह उनकी मुसीबतों को दूर फरमा। या अल्लाह, बिलखसूस फ़लस्तीनी मुसलमानों की जान व माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, खुसूसी रहम व करम का मामला फरमा। या अल्लाह, बेचारे वो भूखे हैं, अल्लाह पाक उनके कपड़े भी तार तार हो चुके हैं, खाने को नहीं, पहनने को नहीं, पीने को नहीं, ज़ख्मी पड़े हैं, लाशें पड़े हैं दफनाने के लिए, अल्लाह पाक कफन तक उनको नसीब नहीं हो रहा है। अल्लाह पाक, बहुत बुरी हालत चल रही है, अल्लाह पाक रहम फरमा दे। या अल्लाह, हम मुसलमानों की उम्मत मुस्लिमा की जो बेगैरती, अल्लाह उसको दूर फरमा दे। या अल्लाह, अपने अज़ाब से पहले पहले, अपनी पकड़ से पहले पहले, या अल्लाह, इन खबीस यहूदियों का खूब दिल लगा के और 100% या अल्लाह हम सबको बायकाट करने की तौफीक अदा फरमा। या अल्लाह, कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ जितनी इनकी दूसरी जो प्रोडक्ट हैं, अल्लाह पाक जो जितने भी इनके ऑयल साबुन और इनके जो टूथपेस्ट वगैरह दूसरी जो गजाई अजनास हैं, उन सब का भी हमें बायकाट करने की तौफीक अदा फरमा। या रब्बे करीम, या अल्लाह, या अल्लाह, या अरहमर रहीमीन। या अल्लाह, इन यहूदियों को हिदायत अता फरमा। अल्लाह, इनकी शर से उम्मत मुस्लिमा की फ़लस्तीन की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, अगर इनके मुकद्दर में हिदायत नहीं है, बाज नहीं आएंगे अल्लाह, तो फिर इनको जल्द से जल्द तबाह बर्बाद कर दे, सफ़ा अफ्ती से मिटा दे। या अल्लाह, इबरत का निशान बना दे। या अल्लाह, गैबी मदद फरमा दे। अल्लाह, हम लोग तो मुखन्नफ हो चुके हैं, अल्लाह हमें तू माफ़ फरमा दे। अल्लाह पाक, तू अपनी खुफिया फ़ौज भेज दे फरिश्तों की मदद के ज़रिए। अल्लाह, फ़लस्तीनों की मदद फरमा। या अल्लाह, इन खबीसों को तबाह बर्बाद कर दे। या अल्लाह, गैबी मदद फरमा। या अल्लाह, पाकिस्तान को, सऊदी अरब को और तमाम इस्लामी मुमलिकत को अल्लाह पाक नेक सालेह क़यादत नसीब फरमा। या रब करीम, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काबतुल्लाह शरीफ की अल्लाह पाक हिफाजत फरमा। यहूदियों के शर से तमाम उम्मत मुस्लिमा की हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, या अरहमर रहीमीन। या अल्लाह, बुरे वक्त आने से पहले पहले, गुमराही से और हर तरह के फितनों से पहले, अपने अज़ाब से पहले पहले, अल्लाह हम सब की आँखें खोल दे, दीनी शऊर अता फरमा। या अल्लाह, हम सबको कामिल हिदायत नसीब फरमा। या अल्लाह, इस मोबाइल की लानत के फितने से हमारी हिफाजत फरमा। या रब करीम, सच्चे अल्लाह वालों की सोबत नसीब फरमा। या अल्लाह, तकवी की दौलत से हम सबको माला माल कर दे। या अल्लाह, मेरे वालिद साहब की और मेरे मुर्शिदीन की और हमारे जुमला मरहूमीन की, कुल मोमिनीन मोमिनात की, कुल जिन्नात की, सब की कामिल मगफरत फरमा। सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम नसीब फरमा। या अल्लाह, सब की कब्रों को नूर से भर दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद।